हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 सितंबर 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही माता यशोदा, बलराम, राधा, गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज 4 सितंबर को मनाया जा रहा और इस बार गृहस्थ और वैष्णव दोनों के ही लिए व्रत का दिन आज एक ही दिन रहेगा। ऐसे में आइए देखते हैं, यूपी काशी के ज्योतिषाचार्यों ने शुभ मुहूर्त जो बताया कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। लेकिन इससे पहले ये देखिए, इस बार जन्माष्टमी पर एक तो 15 सालों बाद खास संयोग बन रहा है अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का, और एग्जैक्टली इसी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण कान्हा का जन्म हुआ था। तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही खास है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय हुआ था। तो यही वजह है कि जब अष्टमी तिथि पर ये नक्षत्र एक साथ आते हैं तो भक्तों के लिए इसे विशेष अवसर माना जाता है। इतना ही नहीं, इस बार जन्माष्टमी पर कुछ और खास संयोग भी बन रहे हैं। जैसे 100 सालों बाद कृष्ण जन्माष्टमी पर मालव्य और बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहे हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार अद्भुत त्रिग्रही राजयोग बन रहा है। हर्षण और वज्र योग भी इस बार एक साथ बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जन्माष्टमी बहुत ही खास है। ऐसे में आइए देखते हैं कि कब कान्हा की पूजा की जाएगी, कैसे पूजा होगी, शुभ मुहूर्त और तिथि के समय क्या रहने वाला है, किस समय भगवान श्री कृष्ण की आज पूजा करनी चाहिए। तो वैसे तो पूजा का जो पहला शुभ मुहूर्त रहेगा मध्य रात्रि में रहेगा। उसके बाद जिन लोगों ने मध्य रात्रि में पूजा नहीं की है तो ब्रह्म मुहूर्त में आज सुबह 4:30 बजे से 5:15 बजे तक अच्छा मुहूर्त रहेगा। फिर जो दिन में पूजा करेंगे उनके लिए अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक, और शाम के समय अमृत काल मुहूर्त रहेगा रात 8:00 बजे से लेकर 9:33 तक। जी हाँ, इस बार जन्माष्टमी पर रात तक पूजा की जा सकेगी क्योंकि अष्टमी तिथि की शुरुआत आज 4 सितंबर को रात में 2:25 से शुरू हो गई है, जो कि कल 5 सितंबर को रात में 12:13 तक अष्टमी तिथि ही रहेगी। तो इस टाइम तक पूजा की जा सकेगी। निश्चित काल में पूजा का शुभ मुहूर्त ये रहेगा। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा की विधि क्या रहनी चाहिए, इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। जन्माष्टमी पर पूजा विधि पर इन टिप्स को फॉलो करें, इस विधि के अनुसार पूजा करें। तो देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शोभा यात्राएं निकलेगी। आज 4 सितंबर से शुरू होकर अगले 7 दिन तक चलेगा यह कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। जन्माष्टमी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। आज 4 सितंबर को यूपी बिहार समेत देश के 15 से ज्यादा राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। जन्माष्टमी के चलते छुट्टी रहेगी इन राज्यों में, आज बैंक बंद रहेंगे। कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों वगैरह में भी छुट्टियां घोषित की गई है। और एक सवाल ये कि जन्माष्टमी के मौके पर शेयर बाजार खुलेगा या नहीं, मतलब एनएससी बीएससी पर ट्रेडिंग होगी या नहीं। तो आपको बता दूं, शेयर बाजार खुला रहेगा, नॉर्मल डेज के मुताबिक सामान्य समय पर ट्रेडिंग होगी। और केट ने भी अनुमान लगाया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देश भर में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कारोबार होने की उम्मीद है। लेकिन जन्माष्टमी से पहले कई चीजों में महंगाई भी देखने को मिल रही है। फल फूलों के दाम वगैरह में उछाल आया। केला 50 से 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। और आज का दिन भारत के लिए एक और वजह से खास रहेगा क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जन्माष्टमी के मौके पर लॉन्च करेगा EOS-5 उपग्रह। जी हाँ, आज शुक्रवार सुबह GSLV-F17 रॉकेट से ये नया सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा, जो भारत की तीसरी आंख के रूप में सुरक्षा के तहत काम करेगा। इससे सीमा सुरक्षा, मौसम और आपदा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। वहीं देखिए, जन्माष्टमी से पहले दुल्हन की तरह सजा उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुए मंदिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच चुके हैं एक दिन पहले ही। यहां देखिए, योगी ने कान्हा बने बच्चों को टेडी बियर दिया, मथुरा में गोद लेकर खीर खिलाई। सांसद हेमा मालिनी भी मुस्कुराती हुई नजर आई। सीएम योगी के मथुरा दौरे की कृष्ण जन्माष्टमी के मौके की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी काशी अयोध्या से भी कान्हा के लिए चांदी के कंगन और मुरली वगैरह भेजे गए हैं। जन्माष्टमी पर बाबा विश्वनाथ की ओर से लड्डू गोपाल को उपहार भी मिला। आज मथुरा में पहुंच जाएगा ये सब सामान भी। ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि देखिए दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा की पोशाक की डिमांड जो है अमेरिका और रूस तक भी देखने को मिल रही है, क्योंकि विदेशों में भी जो कई भारतीय रहते हैं वो कान्हा के लिए ड्रेस भारत से मंगवाते हैं। फिर तो कारोबारियों का व्यापार भी अच्छा खासा बढ़ा है जन्माष्टमी के मौके पर। और जन्माष्टमी पर्व पर रामलीला, दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए भी DDA की तरफ से SOP जारी की गई। स्टॉल जुलूम को लेकर सख्त नियम लागू किए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जन्माष्टमी के मौके पर ब्रजवासियों को विकास की नई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 540 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण और 437 करोड़ से ज्यादा की 167 योजनाओं का शिलान्यास भी होगा आज। वहीं देखिए, बांग्लादेश के PM ने भी शेख हसीना को कंस बताया, दुनिया भर के हिंदुओं को जन्माष्टमी की बधाई भी दी। तो कुछ यूं जन्माष्टमी के पर्व का देश भर में हर्षोल्लास माहौल देखने को मिल रहा है। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के मौके पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आपके अपने DLS भाई की तरफ से और हमारी पूरी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से है। कृष्ण कन्हैया की कृपा से आपका जीवन प्रेम आनंद और समृद्धि से भर जाए, आपके जीवन के दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं दूर हो, कान्हा जी का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आज 4 सितंबर से जुड़े कुछ और बड़े इवेंट। पंजाब चंडीगढ़ में शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है गवर्नर हाउस की ओर मार्च का ऐलान किया है। डीए एचपीएल बहाली समेत कई मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज पीयू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी देखिए, आज 4 सितंबर को देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में अभी कई राज्यों में भारी बारिश बाढ़ वगैरह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, बिहार में गंगा नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ आई हुई है। वहीं यूपी के काशी में भी बाढ़ की वजह से 407 परिवारों ने अपना घर छोड़ा। हिमाचल प्रदेश में 175 सड़कें भी बंद पड़ी हैं। कई राज्यों में मौसम की वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। सरकार का नया प्लान है, देश के सभी राज्यों में जल्द ही दौड़ेगी बाइक टैक्सी। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये प्लान बनाकर तैयार कर लिया है। और ट्रैफिक नियमों को लेकर भी परिवहन मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नेगेटिव पॉइंट सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत लिमिट क्रॉस करने पर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह रद्द कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये तो नियम केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। बाकी गडकरी बोले कि सभी राज्य बाइक टैक्सी को मंजूरी दें, जिससे अलग अलग राज्यों में 8 करोड़ युवाओं को लोगों को रोजगार मिलेंगे बाइक टैक्सी के जरिए। और ट्रैफिक नियमों को लेकर भी खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये बड़ा ऐलान किया है। वैसे नितिन गडकरी के परिवहन मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अब तक उनके द्वारा लिए गए कुछ 5 बड़े फैसलों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, आप व्हाट्सएप से ही आप बिजली पानी क्रेडिट कार्ड वगैरह का बिल भर पाएंगे। नया बिल पेमेंट फीचर व्हाट्सएप ने भारत में भी लॉन्च कर दिया है। तो जो सुविधा आपको गूगल पे फोन पे वगैरह पर मिलती है ना, वही सुविधा अब आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के जरिए भी यूज कर पाएंगे। अगर आपके व्हाट्सएप में ये फीचर नहीं आ रहा तो आप अपडेट कर सकते हैं प्ले स्टोर या एप स्टोर पर जाकर, फिर आपको पेमेंट्स ऑप्शन में ये सारे फीचर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत के वीडियोग्राफी करने पर रोक जो लगाई राज्य सरकारों ने वो जारी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी एक याचिका दायर की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया है। तो यूपी राजस्थान इन राज्यों में बिना अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति वीडियो वगैरह नहीं बना पाएगा स्कूलों में ऐसा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दुनिया के कई बड़े दिग्गज एआई का सर्वर डाउन हो गया। चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, ग्रोक समेत कई सारे एआई मॉडल्स एक साथ ठप हो गए। करोड़ों यूजर्स ने लॉगिन और यूजेस पर शिकायत दर्ज की। दुनिया भर में यूजर्स परेशान हुए। हालांकि कंपनियों का कहना कि अभी तकनीकी समस्याओं को वापस ठीक कर दिया गया है। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जल्दी हमारे देश में घर बनाना महंगा होगा क्योंकि सीमेंट वगैरह के दाम बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट आ रही कि 40 रुपए प्रति बोरी तक सीमेंट के भाव में इजाफा यानी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि पिछले महीने अगस्त में भी कुछ कीमतें बढ़ी थी और इस बार मानसून कमजोर रहा तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी प्रभावित होने से सीमेंट की मांग पर दबाव देखने को मिला। तो इस वजह से सितंबर में निर्माण वगैरह बढ़ते हैं तो इस महीने देश के कुछ प्रमुख बाजारों में सीमेंट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं ऐसा, क्योंकि अभी दुनिया भर में तनाव का माहौल भी चल रहा है। रूस यूक्रेन जंग, अमेरिका ईरान की जंग, इस वजह से भी दुनिया भर में महंगाई बढ़ी हुई है। रिपोर्ट आ रही है कि रूस यूक्रेन ने ब्लैक सी में 300 जहाजों पर और हमले किए हैं। इस वजह से दुनिया में गेहूं और मक्का भी महंगा होने का खतरा मंडराया, क्योंकि रूस का अनाज निर्यात जो है 71% तक घट चुका है। पिछले करीब 1.5 महीनों में दोनों देशों ने 300 से ज्यादा ऐसे जहाजों को निशाना बनाया, मालवाहक जहाजों को। तो इस वजह से दुनिया भर में गेहूं मक्का वगैरह भी महंगा हो सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार एक और प्लान कर रही है कि जो सरकारी अफसर हैं उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी लगाम लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की नई आचार संहिता नीति लाने को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं। दरअसल कर्मचारियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स, वीडियो वगैरह और अपनी निजी राय साझा करने को लेकर सरकार ने चिंता बढ़ाई है और इसलिए सोशल मीडिया आचार संहिता नीति लाने का प्लान कर रही है सरकार। तो इसके तहत सरकारी अधिकारी, कर्मचारी वगैरह इन लोगों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल प्रतिबंधित या लिमिटेड किए जा सकते हैं ऐसा। वहीं चीनी पर जो सरकार ने फैसले लिए उस पर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर 2.5 रुपए तक सस्ती हुई है चीनी। अभी फुटकर कीमत यानी रिटेल प्राइस जो है वो 65 रुपए से गिरकर 62.5 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। देश के कुछ प्रमुख शहरों में चीनी की रिटेल प्राइस क्या चल रही देख सकते हैं आप, क्योंकि हाल ही में आपको बताओ चीनी की जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने जो स्टॉक लिमिट वगैरह के नियम लागू किए सितंबर से ही, तो इनका असर दिखा है, प्राइस में कुछ गिरावट हुई है। हालांकि आजकल सोना चांदी काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं। वापस देखिए आप, अमेरिका से खबर आते ही सोने और चांदी दोनों ही महंगी धातुओं में तूफानी तेजी देखने को मिली। सोना वापस 1,55,000 रुपए के पार पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी एक ही दिन में 4,400 रुपए तक महंगी हुई है। देखिए अभी के लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहे हैं, सोना लगभग 3,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़कर वापस 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। पिछले एक महीने के अंदर गोल्ड के दाम 11,000 रुपए तक बढ़ चुके हैं, जबकि चांदी की कीमत में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी सिल्वर का प्राइस वापस 2,42,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ स्टूडेंट्स पर बार काउंसिल एक्शन नहीं ले सकता है। लॉ यूनिवर्सिटीज के एक समारोह में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ ऑफ इंडिया सूर्यकांत को बुलाने के विरोध के बाद छात्रों का एनरोलमेंट जो रोका गया था, तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं खबर है दिल्ली जल बोर्ड घोटाला केस में आम आदमी पार्टी मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने जमानत दी और इसके लिए 2-2 लाख रुपए के बॉन्ड और 2 जमानतदार भी देने होंगे। 18 अगस्त को इनको गिरफ्तार किया था, आपको बताऊंगा, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार घोटाले में। तो फिलहाल इन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अच्छा, पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल छात्रा को राहुल गांधी ने समर्थन दिया और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आरोपी को बचा रहे हैं, छात्रा के पिता पर हमला हुआ था। वहीं तेलंगाना की राजनीति से बड़ी खबर आ रही कि बेटी के बयान के बाद तेलंगाना की मंत्री को बर्खास्त किया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर 200 करोड़ की जमीन उगाही का आरोप लगाया था, राज्यपाल को सिफारिश भी भेजी थी। तो अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य मंत्री कोंडा सुरेखा को मंत्री परिषद से हटा दिया है। और देखिए, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बोले कि दिशा सालियान मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आरोपों का जवाब क्यों दूं। एक दिन पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर की मौत के मामले में, तो इस पर उन्होंने ये बयान दिया क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप इन पर भी लगाए जा रहे हैं। वहीं देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले कि सीजेपी का किसी भी पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है, सीजेपी किसी पार्टी की बी टीम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम छात्रों की ए टीम है। नेताओं की डिग्री पर भी उन्होंने सवाल उठाए। और पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है कि टीएमसी के बागी सांसदों को नोटिस जारी किया, 22 सितंबर तक वो अयोग्यता पर जवाब देंगे। अभिषेक बनर्जी की शिकायत के बाद लोकसभा स्पीकर ने ये बड़ा फैसला सुनाया। और बीते दिन टीएमसी के दफ्तर में भी फिर से तोड़फोड़ की घटना का मामला देखने को मिला। इस आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोले कि हमले अगर जारी रहे तो दिल्ली में हम बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर धरना देंगे। वहीं खबर देखिए, विदेशी चंदे से जुड़े एफसीआरए बिल पर संसदीय समिति बनाई गई। बीजेपी के संजय जायसवाल इसके अध्यक्ष होंगे। समिति में लोकसभा के 21 मेंबर होंगे और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। एफसीआरए बिल का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी जो विदेशी चंदे से जुड़े मामला है उसको लेकर अब ये समिति बनाई गई है जो आगे के नए नियम कानून कायदे वगैरह बनाएगी। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और वहीं खबर है, अमेरिका की यात्रा के बाद अब ब्रिटेन पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। यहां हिंदू संगठनों ने उनका स्वागत किया। सरकार ने संसद में कहा कि ये दौरा इमिग्रेशन नियमों की शर्तें पूरी करता है, पहले इस पर भी सवाल उठे थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण मामले पर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी दोनों चुप क्यों हैं? अगर वो दलित होते तो क्या ऐसे ही चुप रहते हैं? यहां तक कि उन्होंने इस मामले पर जेपी नड्डा को लेटर लिखकर एफआईआर की मांग भी रखी है। और देखिए, पंजाब के नेता राघव चड्ढा बोले कि पंजाब सरकार ने वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा, सिप्टेट कैटेगरी में डाला, तो आम आदमी पार्टी बोले कि वो खुद ही बैकडेट से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अच्छा, और एक आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ दोस्तों। देखिए, तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री बने विजय थलापति, साउथ के एक्टर भी है, तो सोशल मीडिया पर उनके नाम से फर्जी एआई वीडियो बनाकर ठगी की जा रही है। लोगों से व्हाट्सएप पर जुड़ने को कहा गया। पाकिस्तान से जुड़े फेसबुक अकाउंट भी मिले जिन पर एफआईआर भी दर्ज हुई। तो डीप फेक वीडियो बना करके साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं। उनके द्वारा वीडियो में डोनेशन चंदा वगैरह की कही जा रही, तो ऐसे कभी ठगी का शिकार ना हो आप, है ना। वहीं देखिए, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सीजेपी के विदेशी कनेक्शन के आरोप खारिज किए। वो बोले कि कांग्रेस जनता पार्टी के 94% फॉलोअर्स भारत से हैं, वो जांच के लिए भी तैयार हैं और हमने कोई विदेशी फंडिंग भी नहीं ली है। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में, देखिए आप अगली बड़ी खबर। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सख्त निर्देश दिया और कहा कि सभी टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं। हाईवे के किनारे पार्किंग और अतिक्रमण से बढ़ रहे सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई से कहा कि मॉनिटरिंग रूम भी बनाए जाएं ताकि रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर लगाम लगाए जा सके। वहीं खबर है, 2019 में जो पाकिस्तानी जेट गिराने वाले अभिनंदन वर्तमान है, उन्होंने अब एयरफोर्स छोड़ी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की कैद में ये रहे थे, आपको बताऊंगा। उस वक्त काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी इस मामले को लेकर। तो अभी इन्होंने एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले लिया, अब ये यात्री विमान उड़ाएंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत के मशहूर यूट्यूबर नीतीश राजपूत बिग बॉस 20 में जा सकते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। ध्रुव राठी की तरह लॉजिक और फैक्ट्स बताने वाले वीडियोस बनाते हैं ये, तो बिग बॉस 20 में इनकी एंट्री हो सकती है। सलमान खान के रियलिटी शो में ये जा सकते हैं, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि नीतीश राजपूत के यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान ने बैन कर रखा है, तो देखते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी बिग बॉस में एंट्री होती है या नहीं। और भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि देखिए, एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल टेस्ट किया। इसका वजन 300 किलो तक होगा, जिसे मिग और मिराज एयरक्राफ्ट दोनों से ही दागा जा सकेगा। ये मतलब भारत ने खुद का LRGB यानी स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, तो इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, दूर से ही दुश्मनों पर हमला किया जा सकेगा। 1200 मीटर की ऊंचाई से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है ऐसा। और एक अच्छी खबर देखिए, देश में बना सबसे तेज ड्रोन जो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, मिसाइलों को मार सकता है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज होगा। देश का सबसे तेज थर्रार रफ्तार भरा इंटरसेप्टर ड्रोन बनकर तैयार हो चुका है जो दुश्मन मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। हैदराबाद के डिफेंस स्टार्टअप अपोलियन डायनेमिक्स ने ये जानकारी दी है। और खबर है, हरियाणा के वीर राजा हसन खां बनेंगे राष्ट्रीय हीरो। 500वें बलिदान वर्ष पर देश भर में आयोजित होंगे राष्ट्र प्रथम संवाद कार्यक्रम। 6 सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और हवाई यात्रियों से जुड़ा एक अपडेट देखिए, लखनऊ में एयर एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। वाराणसी से इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन कार्गो कंपार्टमेंट में धुएं का अलार्म बुझा, तो उसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एक और बड़ी ठगी की घटना देखिए। गुजरात में लोन पर फोन लेकर ठगी के 100 से ज्यादा मामले सामने आए। गैंग लोगों के साथ ठगी कर रही है, महंगे मोबाइल और गरीबों को लालच देकर शिकार बनाते हैं। जी हां, गुजरात के पाटन बनासकांठा समेत कई इलाकों में महंगे मोबाइल फोन के जरिए ठगने का ये स्कैम चल रहा है। मोबाइल खरीदने के लिए गरीबों के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर उनके साथ ठगी होती है लोन के नाम पर। तो सावधान रहें ऐसे फर्जीवाड़े से भी। और वहीं खबर है, अमेरिका में अब $1 का सिक्का कॉइन जारी किया गया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है। एक सिक्का 2.5 गुना कीमत में बिका, कुछ ही घंटे में आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया। अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर यह कॉइन जारी किया। और वहीं देखिए, यूक्रेन दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की, और रूस से तेल खरीदने पर उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। वो बोले कि भारत के फैसलों का सम्मान करना जरूरी है। विदेश मंत्री ने कहा कि तेल खरीद पर रोक लगाने से जंग नहीं रुकेगी, बल्कि युद्ध तो बातचीत से ही खत्म होगा। और वहीं भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए मध्यस्थता निभाने की भी सहमति जताई है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो सबसे पहले तो देखिए नेपाल बाढ़ से जुड़े अपडेट। एक बार फिर से नेपाल से 55 किलोमीटर दूर तिब्बत में 5 की तीव्रता का बड़ा भूकंप देखने को मिला। एक सप्ताह पहले भी आपको बताऊंगा, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियर फटने की वजह से जो तबाही मची थी, उस घटना में मरने वालों का आंकड़ा 1280 तक पहुंच चुका है, जबकि 5000 से भी ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच रिपोर्ट आ रही कि नेपाल में बाढ़ से तबाह हुए जिलों में 20,000 घर बनाने की भी एक चुनौती सामने आई है। और नेपाल सरकार ने फैसला लिया, 7 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। त्रिशूली में अब भी सुरंग का रास्ता खोलने में जुटी है रेस्क्यू टीम, और भीषण फ्लैश फ्लड में जान गंवाने वालों के सम्मान में 7 तारीख को नेपाल राष्ट्रीय शोक मनाएगा। और एक बड़ी वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आ रही कि हिमालय में 7 मिनट में तबाही मची, लेकिन चीन की तैयारी नाकाम रही। पिछली बार तो झील फटी थी, इस बार पूरा ग्लेशियर ही टूट गया, यही वजह कि नेपाल में इतनी भयानक बाढ़ आई है। भारत के मौसम के हालातों की बात करें तो देखिए आप, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से पिछले 24 घंटों में 15 लोगों की मौतें भी हो गई। बिहार में भी बाढ़ का खतरा और बढ़ा। यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे भी फिर से धंसा। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ आई हुई है। 8 नदियां उफान पर चल रही है। गंडक और कोसी नदी में कटाव भी देखने को मिला। राजधानी पटना में गंगा हाईएस्ट फ्लड लेवल को क्रॉस करने वाली है। अब आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पूरे बिहार राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है, और बाढ़ के खतरे को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों को सावधान रहने और सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। बिहार की ये बाढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 8 जिलों में तो बाढ़ का हाई अलर्ट। पटना में PHED कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू आयोजित किया जा सके। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज हवाई सर्वे भी करेंगे। मौसम विभाग का कहना कि बिहार में 9 सितंबर तक मूसलाधार भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट रहेगा। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कई जगहों पर हवाएं भी चलेगी, तो सावधान रहें। और अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के इन पूर्वी हिस्सों के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं देखिए पंजाब, जालंधर वगैरह में भी तेज बारिश हुई। अगले 3 दिन पंजाब राज्य में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। चंडीगढ़ में भी बादल छाए रहेंगे। और मध्य प्रदेश में भी देखिए लैंडस्लाइड से सीधी और यूपी रूट ब्लॉक हुआ। उमरिया में एक महिला बह गई। छतरपुर में स्कूल बंद है। कई जगहों पर कच्चे मकान वगैरह ढह गए। बरगी डैम के 6 गेट भी खोले गए। MP के भी कई जिलों में बाढ़ से हालात काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आज 4 सितंबर को मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा अति भारी बारिश का, और यही बारिश का सिलसिला 5 और 6 सितंबर तक भी जारी रहेगा। राजस्थान में देखिए धौलपुर, दौसा समेत 6 जिलों में बारिश की चेतावनी। भरतपुर में 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा। आज से राजस्थान में और तेज बारिश का अलर्ट है। आज 4 सितंबर को और कल 5 सितंबर को भी राजस्थान के लगभग इन पूर्वी हिस्सों के आधे जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। 6 तारीख तक बारिश जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में देखिए 23 जिलों में बाढ़ आई हुई है। जंगल से बाहर आए बाघ PM मोदी के फोन के बाद काशी DM फील्ड में उतरे, जिसमें पिता, 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौतें भी हो गई अलग अलग घटनाओं में। आज 4 सितंबर को भी यूपी के इन 65 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा। कई जगहों पर दुकानों में घुसा पानी। शिमला में ये लैंडस्लाइड की घटना हुई, और अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी रहेगी हिमाचल में। उत्तराखंड में भी देखिए नैनीताल, पिथौरागढ़ में तेज बारिश चल रही। चमोली में लैंडस्लाइड हुआ। हल्द्वानी में गोला नदी भी उफान पर चल रही है। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन 4, 5, 6 सितंबर तक उत्तराखंड के इन जिलों में बारिश की संभावना जताई है। और मध्य प्रदेश की एक घटना देखिए, बारिश से एक मकान की छत ढह गई, जिसमें माँ बेटे की मौत हो गई। पिता और 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हैं। MP ग्वालियर के डबरा का यह मामला है। बाकी ऑल ओवर दोस्तों देश भर के अन्य राज्यों के मौसम के हाल की बात करें तो मध्य भारत के राज्य ईस्ट मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट है बारिश का। बाकी कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी और अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। हालांकि इन ग्रीन ग्रीन जोन इलाकों वाले राज्यों में बारिश की इतनी ज्यादा चेतावनी नहीं है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स क्लोजिंग सेशन में 2100 अंक तक टूट गया, हालांकि फिर रिकवर होकर 417 अंक नीचे 76153 पर बंद हुआ। वहीं खबर देखिए, FSSAI ने YY नूडल्स बनाने वाली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की। CG फूड इंडिया को वेज भुजिया नमकीन का उत्पादन रोकने का आदेश दिया है क्योंकि कंपनी ने टूटे नूडल्स से भुजिया बनाया। 32,000 किलो का स्टॉक भी जब्त हुआ। FSSAI की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। और देखिए, केन्या के राष्ट्रपति ने टाटा केमिकल्स को अपना कारोबार समेटने का आदेश दिया, कहा कि कंपनी की मौजूदगी से देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर रिपोर्ट आ रही कि अगले महीने अक्टूबर से ये मुक्त व्यापार समझौता लागू हो जाएगा दोनों देशों के बीच, जिसमें 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस और किसानों वगैरह को भी कई फायदे मिलेंगे। और देखिए, उबर कंपनी ने 3300 कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की। वर्क फ्रॉम होम पर भी रोक रहेगी, अब AI को बढ़ावा देगी कंपनी, इसमें निवेश करेगी कर्मचारियों के बजाय। और सरसों की कीमत पर खबर आ रही कि मंडियों में सरसों की आवक कम हुई, इस वजह से खरीदारी तेज होने के कारण 9150 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचे सरसों के दाम देश की अनाज मंडियों में। वहीं खबर है, आपका AI एजेंट भी जल्द ही UPI के जरिए पेमेंट कर पाएगा, यानी ऑटोमेटिकली आपके UPI पेमेंट्स हो जाएंगे। NPCI इस तरह के नए सिस्टम पर भी काम कर रहा है। और देखिए, देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी रिपोर्ट आ रही कि पेट्रोल की गाड़ियों का दबदबा खत्म होने के कगार पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियों की हिस्सेदारी मार्केट में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, अगली खबर, चीन के एक युवा ने अपनी PhD छोड़कर रिसर्च पेपर की गड़बड़ियां खोजने लगा, एक युवा शख्स, और इस दौरान उसने 40 वैज्ञानिकों का फर्जीवाड़ा भी पकड़ा। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सरकार ने कई वैज्ञानिकों पर कार्रवाई करते हुए उनकी फंडिंग और पुरस्कार वगैरह भी छीन लिया। एक युवा की पहल देखिए जरा। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी अयोध्या राम मंदिर के नए CEO पर अपडेट आना। उनका कहना कि मैंने अभी चार्ज नहीं संभाला है। वो बोले कि ट्रस्ट के साथ 2-4 बैठकें करके कामकाज समझूंगा, फिर जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं खबर है, उत्तराखंड आएंगे विराट कोहली और अनुष्का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको चारधाम यात्रा का न्योता दिया है। विंटर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जैसा होगा स्टार कपल का दौरा। और मद्रास हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पति पत्नी के साथ रहने को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का हर जगह पति के साथ रहना या जाना जरूरी नहीं है। एक पति पत्नी के तलाक केस मामले पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट बोला कि वोडाफोन डॉग की तरह पीछे चलने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं पति से। कोर्ट ने कहा कि नौकरी या दूसरी वजहों से पति अगर कहीं बाहर जाता है तो पत्नी का हर बार उसके साथ जाना जरूरी नहीं है। एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वहीं देखिए, जेएनजी युवाओं पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि लोग क्या सोचेंगे इसके डर से अपना करियर नौकरी गंवा रहे हैं जेएनजी युवा। 79% युवा प्रोफेशनल रिलेशन को जरूरी मानते हैं, लेकिन 52% को यही नहीं पता कि कैसे शुरुआत करें। और अगला अपडेट देखिए, खरीफ सीजन में धान किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही। खरीद को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इस खरीफ सीजन में 708,00,000 टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया, हालांकि ये लक्ष्य पिछले साल से कम है। और बड़ी खबर देखिए, नेपाल जैसी आपदा से बचा सकती है GIS मैपिंग तकनीक। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भूस्खलन, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की पहले से ही निगरानी करके अलर्ट कर सकती है। इसरी इंडिया ने स्वदेशी GIS सॉफ्टवेयर जियो सरल लॉन्च किया है, जो भारत को भविष्य में इस तरह की गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद करेगी। देख सकते हैं आप ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करते हैं और आपदा से पहले लोगों को अलर्ट मिल जाएगा इसके माध्यम से, है ना। वहीं देखिए, पाकिस्तान में 100 साल पुराना हिंदू मंदिर तोड़े जाने पर भारत में भी आक्रोश का माहौल देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध भी जताया। और महाराष्ट्र के नासिक में भूख हड़ताल पर बैठे आदिवासी छात्र अब सड़कों पर उतर आए। छात्रावासों को लक्ष्मण मानकर संगठन को सौंपने का विरोध किया, मंत्री का इस्तीफा भी मांगा। वैसे महाराष्ट्र में अभी मनोज जरांगे भी आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में मातम सा छाया क्योंकि मराठा आरक्षण के समर्थन में आए एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार का एक और प्लान देखिए, अब सरकारी कर्मचारियों की कुंडली ऑनलाइन होगी। समय पर जानकारी नहीं भरी तो वेतन तनख्वाह भी अटक जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार कर्मचारियों का नया ऑनलाइन डेटाबेस तैयार कर रही है, जिसमें नियमित के साथ अस्थायी और मानदेय कर्मचारी भी शामिल होंगे। सभी को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। अलग अलग चरणों में अभियान लागू होगा, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और एक कलाकार की अनोखी कलाकृति देखिए आप, फिल्म हनुमान अंश में दिखी राजस्थान जयपुर के चित्रकार की पेंटिंग। कीबोर्ड की कुंजियों से ये पेंटिंग बनाई, 3 महीने में तैयार हुई नीम करोली बाबा की कलाकृति। मुकेश शर्मा इनका नाम है, मेनी मेनी कांग्रेट्स इनको, वाकई में इनकी कला तारीफ के काबिल है। वहीं खबर है, NEET PG एग्जाम को दोबारा कराने की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उल्टी फटकार लगाई और 25,000 का जुर्माना भी लगाया। और देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नया फैसला लिया। हिंदू मुस्लिम विवाह समेत 13 मैरिज एक्ट को खत्म करके एक ही सिंगल कानून बनाया जाएगा। दिल्ली में UCC की पहली बैठक हुई और बंगाल सरकार भी अब UCC समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। और स्वाइन फ्लू पर बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बदलते मौसम के बीच स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। बीते दिन भी कुछ और नए मामले देखने को मिले। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि H1N1 की जांच सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क कराएं, यानी स्वाइन फ्लू की सरकारी अस्पतालों में फ्री में जांच होगी ऐसा। और देखिए, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगा, 100% वीवीपीएटी गिनती की याचिका को खारिज कर दिया है। और भारत में सैन्य सहयोग के मंथन पर अपडेट आ रहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि साथ काम करने की जरूरत है। बेल्जियम के रक्षा मंत्री के साथ उनकी ये बातचीत हुई और उन्होंने भी क्या बयान दिया देख सकते हैं आप। और ईडी की बड़ी कार्यवाही देखिए, कोलकाता समेत देश के 4 राज्यों में छापेमारी हुई, नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये बड़ी कार्यवाही की गई। वहीं इस बार जनगणना पर एक और लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा कि सरकार एआई का इस्तेमाल करेगी जनगणना में, जिससे जातियों की गणना आसान होगी, करोड़ों आंकड़ों का डेटाबेस का चुटकियों में विश्लेषण हो पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, भारत की सुरक्षा पर संकट छाया, देश में 50,000 से भी ज्यादा ड्रोन ऐसे हैं जो बिना जांच और रजिस्ट्रेशन के एक्टिव हैं, तो इससे देश की सुरक्षा में खतरा हो सकता है कभी भी। और खबर है, आने वाले 11 सितंबर को दिल्ली में सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, छुट्टी रहेगी, केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। ब्रिक्स समिट का आयोजन होगा 11 से 13 सितंबर तक, तो इसके लिए छुट्टी का ऐलान किया। और टोल प्लाजा पर बड़े फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही कि 100 टोल प्लाजा पर गड़बड़ घोटाला हुआ, एनएचएआई को बिना बताए काटी नकली रसीदें, ईडी ने 14 जगहों पर छापेमारी भी की। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की एक बड़ी चेतावनी देखिए, अगले साल 2027 तक मौसम पर अलनीनो का असर भारी रहेगा, अभी तो अलनीनो का और प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दी गई है, तो इस अलनीनो की वजह से भारत में कहीं सूखा तो कहीं अत्यधिक बारिश और बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है ऐसा। वहीं खबर देखिए, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज हादसे पर अपडेट आ रहा कि दोनों जवानों के शव मिल चुके हैं, एक तो हरियाणा में 200 किलोमीटर दूर मिला, दूसरा यूपी में मिला। एक दिन पहले यह हादसा हो गया था, आपको बताऊंगा। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए, ईरान को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें विकसित करने में मदद कर रहा रूस, अमेरिका के लिए पनप रहा नया खतरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि रूसी जहाजों को जब्त करना भी आतंकवाद है, इससे यूक्रेन की जंग कभी खत्म नहीं होगी। नॉर्वे के जहाज जब्त करने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। और एक रिसर्च रिपोर्ट, तो रूस यूक्रेन युद्ध पर मैंने आपको बताई थी कि पिछले 1.5 महीने में 300 से ज्यादा जहाजों पर हमला हुआ, तो इस वजह से दुनिया भर में महंगाई वगैरह और बढ़ सकती है ऐसा। वहीं खबर देखिए, भारत की जगह चीन से महंगी बिजली खरीद रहा बांग्लादेश, दोगुनी कीमत चुका रहा, तो बांग्लादेश सरकार के इस फैसले का देश में भी विरोध देखने को मिल रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जन्मजात नागरिकता रोकने की दूसरी कोशिश भी नाकाम हुई, अमेरिकी कोर्ट ने अब बर्थ टूरिज्म बैन करने वाला आदेश भी रोक दिया जो अभी एक दिन पहले ट्रंप ने जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार नागरिकता नहीं छीन सकती है। हालांकि एक रिपोर्ट आ रही कि भारत के H-1B वीजा धारकों पर भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए खतरा हो सकता है अमेरिका में, क्योंकि अब अगर उनकी नौकरी गई तो 60 दिन की मोहलत भी खत्म करने का प्लान कर रही है ट्रंप सरकार, तो उन्हें अमेरिका देश छोड़ना पड़ेगा अगर उनकी नौकरी चली जाती है तो ऐसा। और अमेरिका से एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि अमेरिकी स्कूलों में AI साक्षरता पर जोर दिया जा रहा, शिक्षक भी बच्चे बच्चों को AI से जुड़ी चीजें सिखा रहे हैं। वहीं देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले कि भारत और ईरान के बीच ट्रेड डील पर बातचीत नहीं हुई, तेहरान की मदद करने वालों पर हम भी बैन लगाएंगे। मोदी और पजिश्कियान की मुलाकात पर उनसे सवाल पूछा गया जिसका जवाब उन्होंने ये दिया। वहीं खबर देखिए, नीदरलैंड्स ने अमेरिका और कनाडा से अपना 86 टन सोना हटाकर लंदन भेज दिया, जिसे अब बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा जाएगा। नीदरलैंड्स का कहना कि वहां से संकट आने पर हम आसानी से इस गोल्ड को बेच सकेंगे। और खबर आ रही, भारत और बेल्जियम दोनों देशों के बीच साझेदारी में नई गति आएगी, अगले 5 सालों में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले का स्वागत किया। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार ने 26 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिससे 5,000 लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। और वहीं बिहार में जमीन के कागजात भी अपडेट होंगे, मृत जमीन मालिकों की जमाबंदी अब वारिसों के नाम होगी, बिहार सरकार का ये नया प्लान है। और देखिए, बिहार राज्य बिजली के क्षेत्र में भी जल्द ही आत्मनिर्भर बनेगा, अगले 5 सालों में 1,38,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्लान तैयार किया बिहार सरकार ने बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों पर बड़ा संकट छाया, 2,426 स्कूल बंद पड़े, 7,000 स्कूलों को और मर्ज किया जाएगा, सांदीपनी मॉडल से शिक्षा का ढांचा बदलने का प्लान किया अब एमपी सरकार ने। वहीं खबर है कि इस साल देश की 80% आबादी पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया। और मणिपुर राज्य में हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है कि 3 साल बाद भी मणिपुर के जख्म ताजा है। मणिपुर हिंसा पर राज्य सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 3 सालों में मणिपुर में कुल 306 लोगों की मौत हुई, 49 लोग अभी भी लापता है, खुद सरकार ने विधानसभा में ये आंकड़े जारी किए हैं। वहीं खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में खनन कार्यों के लिए बनेगा अलग विभाग, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नदियों की ड्रेजिंग और माइनिंग से कमाई का ये प्लान भी बताया। और खबर है, हरियाणा के 582 गांवों में बनेंगे विलेज नॉलेज सेंटर, जिससे ग्रामीणों को शहरों जैसी सुविधाएं मिलेगी इन केंद्रों पर। एक सेकंड यार, पानी भी लेता हूँ, थोड़ा फ्लो ब्रेक हो गया। नॉन स्टॉप रफ्तार से जब खबरें पड़ी जाती हैं, बुलेट ट्रेन की स्पीड से, तो थोड़ी चूक हो ही जाती है। कई लोग रोजाना कमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जानबूझकर मैं कभी गलती नहीं करता ऐसा। खैर, अपनी ढेर सारी बातें करेंगे बाद में, कभी मैं लाइव आऊंगा बहुत जल्द DLS न्यूज चैनल पर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में, वापस स्टार्ट करते हैं अपनी खबरों की गाड़ी को। तो देखिए आप, दिल्ली के 40 प्राइवेट स्लीपर बसों में एक भी पैनिक बटन नहीं मिला, रियलिटी चेक में सुरक्षा नियमों में ये अनदेखी देखने को मिली। हाल ही में आपको बताऊंगा, एक नाबालिग से दुष्कर्म कर लिया था एक स्लीपर बस के उसके ड्राइवर और कंडक्टर ने, उसके बाद अभी दिल्ली में बसों की ये जांच चल रही है। वहीं खबर है तमिलनाडु के चेन्नई में बनेगी वर्ल्ड क्लास ओलंपिक सिटी और मोटर स्पोर्ट्स सिटी भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री विजय थलापति ने बड़ा ऐलान किया है, जहां F1 रेसिंग वगैरह आयोजित की जाएगी ऐसा। और जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के लिए 40,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। हाईवे और सुरंग वगैरह डेवलप किए जाएंगे, जिससे जम्मू का नक्शा बदलेगा, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी राहत मिलेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के घी और पंजाब की मिर्च की बिक्री पर राजस्थान में रोक लगी, 9 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। FSSAI खाद्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए। और बंगाल सरकार का एक और प्लान देखिए, बंगाल में भी अब एक राष्ट्र एक छात्र आईडी की शुरुआत होगी। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाई जाएगी, जिससे छात्रों को जीवन भर डिजिटल शैक्षणिक पहचान मिलेगी। अपार आईडी शुरू होने जा रही, मतलब बंगाल में भी ऐसा। और उत्तराखंड के मदरसों में भी होगी अब AI और इनोवेशन की पढ़ाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 मदरसों को मान्यता पत्र भी बांटे और इस दरमियान ये बड़ी घोषणा की है। वहीं राजधानी दिल्ली के फायर सेफ्टी नियमों में बदलाव किया जाएगा। NOC की प्रक्रिया भी आसान होगी, लेकिन सुरक्षा जांच पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली सरकार ने फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों में यह बदलाव किया है। वहीं देखिए दिल्ली में 20,506 अनाधिकृत आधार लेनदेन पाए गए। श्रमिक कल्याण बोर्ड ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, ये कंपनी का मामला है। और यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, इलाज में लापरवाही पर उत्तर प्रदेश के 26 सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया, 9 पर विभागीय कार्यवाही का आदेश भी दिया है उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने। वहीं यूपी नोएडा में बढ़ेगा इलेक्ट्रिक बसों का नेटवर्क, जल्द ही 25 नई बसें शामिल की जाएगी। और नोएडा की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए भी बड़ी राहत की खबर आ रही, 2500 फ्लैटों के रजिस्ट्री का रास्ता भी साफ हुआ, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। और यूपी कानपुर में अब इकाना से भी बड़ा होगा ग्रीन पार्क, 55,000 दर्शकों की क्षमता का बड़ा पार्क बनाया जाएगा, 456 करोड़ से कायाकल्प होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के 6 प्रांतों में भाजपा की क्षेत्रीय टीम भी घोषित हो चुकी है। और यूपी में संग्रहालयों का भ्रमण करेंगे PM श्री स्कूलों के विद्यार्थी। ACS ने अध्ययन यात्रा कराने के निर्देश भी दिए, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को विजिट करवाया जाएगा म्यूजियम में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल खिलाड़ियों के खेल कोटे पर रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया, अब सिर्फ 6 महीने की उपलब्धियां ही स्वीकार की जाएगी, उससे पुराने खेल में मेडल वगैरह जो है वो रेलवे के खेल कोटे में नहीं आएंगे। वॉलीबॉल खेल को लेकर रेलवे ने यह फैसला सुनाया। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ में भी स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने लगे, अब तक 158 केस सामने आ चुके हैं, सबसे ज्यादा रायपुर में 66 मरीज हैं। और छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे भारी बारिश का भी अलर्ट रहेगा। वहीं कर्नाटक के बंगलुरु में बिहार महोत्सव 2026 का आगाज हुआ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2028 को मां सीता का मंदिर स्थापित होगा। और झारखंड राज्य में बेरोजगार युवाओं पर रिपोर्ट सामने आ रही कि रोजगार के इंतजार में लगभग 4 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं अभी भी, जबकि पिछले 2 सालों में सिर्फ 18,990 युवाओं को रोजगार मिला, नौकरी भत्ता वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में बनेंगे मल्टी यूटिलिटी डक्ट, जिससे बार बार सड़क खोदने से राहत मिलेगी। चांदनी चौक में 2 पायलट कॉरिडोर से इनकी शुरुआत होने जा रही है। और दिल्ली में अब कारोबार करना भी आसान होगा, कैबिनेट बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है रेखा गुप्ता सरकार ने। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की कल 5 सितंबर को कैबिनेट बैठक होगी। और पंजाब चंडीगढ़ में आने वाली दिवाली के त्यौहार के लिए ग्रीन पटाखों के लाइसेंस भी 7 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए रेलवे में NTPC के 5,165 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 3,500 के लगभग ग्रेजुएट हैं और 1,650 के लगभग अंडर ग्रेजुएट पद हैं। 7 सितंबर से इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में स्पेशल TET का भी विज्ञापन जारी हुआ, 3 नवंबर को परीक्षा होगी, 5 सितंबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। और यूपी में माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक की अर्हता में भी संशोधन किया गया, अब 50% अंक के साथ BEd करना जरूरी होगा। यूपी सरकार ने यह भी नया नियम लागू कर दिया है। वहीं कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट है, रूना खान रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2026 से सम्मानित हुई। और बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी में भी 2,049 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें आवेदन की लास्ट डेट 30 सितंबर रहेगी। वहीं खेल जगत से खबर देखिए, मंदाना महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है, मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा और भारत अब एशिया कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच चुका है। मैनी मैनी कांग्रेट्स स्मृति मंदाना को। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए धनु राशि वालों के लिए कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं और मकर राशि वालों को भी अपना रुका पैसा वगैरह मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख।
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो ID नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।